राम श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी नवमः अध्यायः श्लोक 34 ट्रेक 34
नवे अध्याय का सार। भगवान ने सातवें अध्याय से ज्ञान और विज्ञान का विषय कहना प्रारंभ किया। ज्ञान से संसार की मुक्ति है और विज्ञान से भगवान में प्रेम होता है। बीच में अर्जुन के प्रश्न करने पर आठवें अध्याय में दूसरा विषय चला, परंतु नवें अध्याय से भगवान पुनः यही विषय कहना आरंभ करते हैं। सातवें अध्याय में भगवान ने संसार की उत्पत्ति का कारण बताया कि परा और अपरा इन दोनों मेरी प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, छठा श्लोक। परंतु नवे अध्याय में संसार की स्थिति बताते हैं कि जिनकी दृष्टि में संसार की सत्ता है उन साधकों के लिए संसार मुझ में है और मैं संसार में हूँ, चौथा और पांचवा छठा श्लोक। इसी को छठे अध्याय में भगवान ने कहा कि यूमाम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, छह का तीस। परंतु जिन सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है उनकी दृष्टि में एक मैं ही मैं हूँ, वासुदेव सर्वम। भगवान कहते हैं कि यद्यपि संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला तथा धारण करने वाला मैं ही हूँ, तथापि मैं उन प्राणियों के आश्रित नहीं हूँ, प्रत्युत वे प्राणी मेरे आश्रित है। नवे अध्याय का पांचवा श्लोक। जैसे आकाश में रहने वाली वायु आकाश के आश्रित रहती है पर आकाश वायु के आश्रित नहीं होता, ऐसे ही परा और अपरा प्रकृति तो भगवान का स्वभाव होने से भगवान के आश्रित है, पर भगवान परा और अपरा प्रकृति के आश्रित नहीं है। इसलिए जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में स्थित रहती है, आकाश में ही लीन होती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी महासर्ग में भगवान से ही प्रकट होते हैं, भगवान में स्थित रहते हैं और महाप्रलय में भगवान में ही लीन हो जाते हैं। सातवां श्लोक। तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणी प्रकृति के आश्रित है और प्रकृति भगवान के आश्रित है, आठवां श्लोक। दूसरे शब्दों में भगवान के एक अंश में प्रकृति है और प्रकृति के एक अंश में प्राणी है, इसलिए सृष्टि की रचना करने पर भी भगवान सृष्टि रचना रूप कर्म से बंधते नहीं है, क्योंकि वास्तव में सृष्टि रचना का कार्य भगवान के आश्रित रहने वाली प्रकृति ही करती है। दसवां श्लोक। इस रहस्य को न जानने के कारण बेसमझ लोग भगवान को ही अपनी तरह शरीर माने अपरा के आश्रित मान लेते हैं, जैसे कि हम शरीर के बिना नहीं रह सकते ऐसे भगवान भी शरीर के बिना नहीं रह सकते। ग्यारहवां श्लोक। ऐसे लोग आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं, बारहवां श्लोक। वास्तव में जैसे मनुष्य में शरीर और शरीरी का भेद रहता है ऐसे भगवान में शरीर शरीरी का भेद नहीं है, सदसच्चाहम अर्जुन है, नौका 19। इसलिए जो मनुष्य भगवान को प्रकृति के आश्रित नहीं समझते वे देवी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं, वे प्रकृति के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित होते हैं, तेरहवां श्लोक। भगवान के आश्रित होने के कारण ही वे महात्मा कहलाते हैं। कर्मयोग शरीर की मुख्यता से चलता है और ज्ञान योग शरीरी की मुख्यता से चलता है। एक देश को लेकर चलने से कर्मयोगी और ज्ञान योगी एक देशीय हैं, परंतु भक्ति योग भगवान की मुख्यता से चलता है, इसलिए भक्त को भगवान ने महात्मा अर्थात महान आत्मा कहा है। वे अनन्य मन से भगवान का भजन करते हैं, कारण कि जब उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं तो फिर उनका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए। इसलिए वे भगवान में नित्य युक्त रहते हैं, कभी भगवान से अलग होते ही नहीं। नित्य युक्ता नित्याभियुक्ता नाम नौका 14, नित्य युक्ता नौका 14, नित्याभियुक्ता नाम नौका 22। साधक कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग साधनों से भिन्न भिन्न उपास्यों की उपासना करते हैं, परंतु वास्तव में उन सभी साधकों के द्वारा एक ही समग्र भगवान की उपासना होती है। माम उपासते नौका 15, त्रैविद्या माम नौका 20, तेपि मामेव नौका 23, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च नौका 24। कारण कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं, नौके 16 से लेकर के 19 तक। इस रहस्य को न समझने के कारण जो लोग अपने उपास्य को भगवान से अलग मानकर सकाम भाव से उनकी उपासना करते हैं, उनकी उपासना वास्तव में भगवान की होने पर भी अविधि पूर्वक होती है, इसलिए उनका पतन हो जाता है, अर्थात वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। 9वें अध्याय का 23वां 24वां। परंतु भगवान की उपासना करने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं। जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनको अनेक नियमों विधियों आदि की जरूरत पड़ती है, जिसमें बड़ी कठिनाई होती है। परंतु भगवान की उपासना में भाव की जरूरत है, क्रियाओं की जरूरत नहीं है। माने तरह तरह के विधियों की नियमों की आवश्यकता नहीं रहती। ये बात 9वें अध्याय के 26वें 27वें श्लोक में आई है। भगवान क्रियाग्राही नहीं है, प्रत्युत भावग्राही है। भावग्राही जनार्दन है, इसलिए भक्त को सुगमता पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य किसी भी आचरण वर्ण आश्रम जाति आदि का क्यों न हो, वह भगवान का भक्त होकर सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। 9वें अध्याय के 30वें से 33वें श्लोक तक। 9वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, मन मना भव 9:34। इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ, मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक। इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करना ही मन मना भव आदि पदों का तात्पर्य है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोध्याय अवतरणिका। 7वें अध्याय में भगवान के द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान कहने का जो प्रवाह चल रहा था, उसके बीच में ही अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न कर दिए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने संक्षेप से देकर अंतकालीन गति विषयक 7वें प्रश्न का उत्तर विस्तार से दिया। अब 7वें अध्याय में कहने से बचे हुए उसी विज्ञान सहित ज्ञान के विषय को विलक्षण रीति से कहने के लिए भगवान 9वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं।